नमस्कार, हेलो, ओला, अलोहा, बोंजोर, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम। स्वागत है आपका पॉडकास्ट कहानी पे, जहां आपकी होस्ट प्राची लेके आती है आपके लिए सुंदर, सजीली, कुछ मन को इठलाने वाली, कुछ गुदगुदाने वाली कहानियां। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बच्चों की जातक कथाएं नाम की पुस्तक में से एक कहानी। जातक कथाएं, अगर आपको पता हो तो कहा जाता है कि ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, और बौद्ध धर्म में यह विश्वास है कि भगवान बुद्ध के जन्म के होने से पहले उनके कई जन्मों में बोधिसत्व के रूप में उनका जन्म हुआ था, और उस पे आधारित कई कहानियां हैं जो जातक कथाओं के नाम से जानी जाती हैं। इस कहानी संग्रह बच्चों की जातक कथाएं की लेखिका श्रीमती डॉक्टर सुनीता हैं, जो ना ही सिर्फ साहित्य के गंभीर आलोचनात्मक लेखनों से जुड़ी हुई हैं, बल्कि उन्हें छोटे बच्चों के लिए सहज सरल संवाद में कहानियां लिखने में भी बहुत सुख मिलता है। इनकी लेखनी छोटे और बड़े सभी को बांध के रखती हैं, और कहानियों के जरिए सरल शब्द में वो उनमें छुपी कुछ न कुछ मूल्य बातें भी सिखा जाती हैं। मैं डॉक्टर श्रीमती सुनीता जी की बहुत आभारी हूँ कि उनके अध्ययन और इस तरह की लेखनी जो सरल शब्दों में कहानियों के जरिए हम तक पहुंच रही है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आभार प्रकट करती हूँ डायमंड पब्लिशर बुक्स का भी, जिन्होंने मुझे अनुमति दी है कि मैं यहाँ पे उनकी किताब में से कहानी पढ़ के सुना सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका टाइटल यानी कि शीर्षक है मिथुन को मिला चांदी का सिक्का। मिथुन एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता खेतों में मजदूरी का काम करते थे। उस काम से जो भी मजदूरी मिलती, उससे उन तीन प्राणियों का पेट बड़ी मुश्किल से भरता था। मिथुन अभी 8-9 साल का बच्चा ही था कि उसके गांव में हैजा फैल गया। गांव में इलाज की उचित व्यवस्था तो थी नहीं, इसलिए धड़ाधड़ मौतें होने लगीं। इसी महामारी में मिथुन के माता पिता दोनों हैजे की चपेट में आ गए। दोनों के चले जाने पर मिथुन तो एकदम अनाथ हो गया। कुछ दिन तो पड़ोसियों ने कभी एक समय कभी दो समय का खाना खिलाया, पर सब कितने दिन चलता। मिथुन का गांव गंगा से थोड़ी ही दूर था। लोग गंगा से ही पानी लाकर घरों का काम चलाते थे। पड़ोसियों ने मिथुन को एक छोटा सा घड़ा दे दिया और कहा, यदि तुम गंगा से हर रोज कुछ घड़े पानी ले आया करोगे तो तुम्हें फिर रोटी की चिंता नहीं रहेगी। बहुत से घरों में स्त्रियां ही यह काम करती थीं। उन्हें सुबह शाम रसोई घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए बहुत सी स्त्रियां मिथुन से आग्रह करती, भैया दो घड़े पानी ला दो, फिर गर्मा गर्म फुलके खिला दूंगी। मिथुन भाग कर पानी ले आता। उसे तो जैसे खेल सा मिल गया था। हाँ, जिस दिन ज्यादा घड़े पानी भरना पड़ जाता, उस दिन उसकी सांस फूलने लगती थी। तब वह थक कर किसी भी पेड़ की छाया में सो जाता था। अपने घर में तो मिथुन बस रात में ही घुसता था सोने के लिए। दिन भर भाग भाग कर लोगों के, खासकर स्त्रियों के बताए काम करता रहता। वह सभी का दुलारा हो गया था, इसलिए वक्त बड़े मजे से कट रहा था। एक बार मिथुन घड़ा भरकर गांव की ओर जा रहा था। उसे रास्ते में चम चम चमकता एक नया चांदी का रुपया दिखाई पड़ा। वह आधा रेत में दबा था, आधा बाहर चमक रहा था। मिथुन ने देखा कि आसपास कोई नहीं है। उसने बड़ी सावधानी से पैर के पंजे से वह रुपया उठाया और अपनी जेब में रख लिया। मन ही मन वह इतना खुश हो रहा था मानो कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। आज तक किसी ने उसे पानी भरने के बदले पैसे तो दिए ही नहीं थे। कोई उसे रोटी खिला देता था, कोई अपने खेत से आए गन्ने दे देता था, कोई हरे हरे चने खाने के लिए दे देता था। किसी को ज्यादा तरस आया तो उसके नाप का अपने बच्चों का पुराना कुर्ता पजामा दे देता। बस इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। आज पहली बार उसे चांदी का रुपया मिला था। शाम के समय वह गांव के बाहर बने एक किले के खंडहर में गया। वहां एक जगह ईंटें उखड़ी देखकर उसने वही रुपया छिपाकर रख दिया ताकि वक्त आने पर निकाल सके। इस खंडहर में कोई आता जाता नहीं था। लोग सोचते थे कि यहां भूत बसते हैं, पर भला मिथुन को किस भूत का डर। उसकी चुस्ती, फुर्ती और निडरता देखकर लोग कहते थे कि मिथुन से तो भूत भी डरते हैं। मिथुन कभी कभार फुर्सत मिलने पर उस खंडहर में जाकर अपना चांदी का सिक्का देख आता था। वह वहीं सुरक्षित रखा रहता था। उसे देख मिथुन को अपार खुशी होती और उसके सपनों को पंख लग जाते। वह सोचता कि कभी उसकी भी खुशहाल जिंदगी होगी। ऐसे ही कुछ और साल बीत गए। मिथुन अब 18-19 साल का अच्छा सा युवक हो गया था। पास पड़ोस की स्त्रियां, जिन्हें वह भाभी कहता था, उसे ठिठोली करती, मिथुन अब तो ब्याह कर ले, कब तक ऐसे अकेले घूमता रहेगा? अगर तू कहे तो मैं कल ही तेरी बात चलाऊं। ऐसी बातें सुनकर मिथुन शर्मा कर तेजी से चला जाता। काम वह अब भी ज्यादातर पानी भरने का ही करता था। हाँ, कभी कभार फसल कटाई का काम भी कर लेता था, पर वह काम तो 15-20 दिन तक ही चलता था, इसलिए वह पानी भरने का काम छोड़ता नहीं था। एक बार पड़ोस में रहने वाले भिम्मन काका ने रात के समय उसे बुलाया। उन्होंने बातों बातों में उसे बताया कि पड़ोस के गांव में उनके साले की लड़की बड़ी सुशील और घर के कामों में निपुण है। अगर मिथुन हाँ कहे तो वे उसका रिश्ता पक्का करवा सकते हैं। मिथुन बहुत संकोची था। वह कैसे कहता कि हाँ, मेरा विवाह करवा दो? वह नीचे मुंह किए हुए मंद मंद मुस्कुराता रहा। भिम्मन काका समझ गए कि मिथुन की तरफ से हाँ है। अगले ही महीने भिम्मन काका जब अपने पड़ोसी गांव में साले के घर गए तो उसकी बेटी अवंती की बात पक्की कराए। साथ ही यह भी तय हो गया कि सर्दियों के शुरू में ही धान की फसल आने के बाद अवंती का ब्याह मिथुन के साथ कर दिया जाएगा। भिम्मन काका जब साले के घर से लौटे तो उन्होंने मिथुन को सारी बात बता दी। मिथुन मनी मन बहुत खुश हुआ, पर साथ ही उसे चिंता भी होने लगी कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कहाँ से नए कपड़े सिलेंगे? कहाँ से दुल्हन के लिए साड़ी खरीदी जाएगी? ये सारी चिंताएं पहली बार उसके दिमाग में उमड़ घुमड़ कर रही थी। अगले ही दिन भिम्मन काका के कारण अड़ोसी पड़ोसी सभी को इस बात की खबर हो गई कि मिथुन का ब्याह होने वाला है। लोगों के चेहरे पर यह सुनकर एक खास तरह की मुस्कान आ जाती। इसका मतलब होता कि खुद का तो ठिकाना नहीं है मिथुन का, ऊपर से दुल्हन को क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा? पर जिन जिन लोगों के घर मिथुन पानी भरकर लाता था, वे सब स्त्रियां बहुत उत्साहित हो गईं। उन्हें यह सोचकर खुशी हो रही थी कि चलो, अब तो मिथुन का घर बस जाएगा, उसे भी कोई गर्म रोटी खिलाने वाली आ जाएगी, उसके सूने आंगन में भी बाल गोपाल खेलेंगे। इन दिनों इन सारी स्त्रियों की बातों का एक मुद्दा होता, मिथुन का ब्याह। वे अपनी पूरी कोशिश में जुट गईं कि मिथुन के माँ बाप नहीं हैं तो क्या, हम करेंगी उसके सारे नेग। कितने बरसों से वह हमारी सेवा करता आ रहा है। सभी स्त्रियां जुट गई ब्याह की तैयारियों में। कुछ दुल्हन के कपड़े तैयार करने में जुट गईं और कुछ मिथुन के। कुछ ने मिलकर मिथुन के घर में चूने पुताई का सारा इंतजाम कर दिया। किसी ने उसके चूल्हे चौके को सवार दिया। आजकल मिथुन हर समय मुस्कुराता रहता था। उसके लिए यह अनुभव एकदम अनोखा था। अभी तक तो वह लोगों की सेवा करता आया था, अब लोग उसकी घर गृहस्थी बसाने की आयोजन में लगे हैं। अगले ही महीने तो मिथुन की शादी होनी थी। करते करते वह दिन भी आ गया। गांव के बड़े बुजुर्ग मिथुन के अभिभावक थे। सभी धूमधाम से बारात में सज कर चले। मिथुन के ससुर रामधन ने पूरी बारात का बहुत अच्छे से खातिरदारी की। 2 दिन तक खूब शगल मेला रहा। 3रे दिन सुबह ही डोली उठी और दोपहर तक मिथुन और बाराती दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंच गए। पड़ोस की स्त्रियों ने बड़े प्यार से दुल्हन को रथ से उतारा और उसके सर पर जल भरा लोटा रखकर मिथुन के घर ले आई। मिथुन का घर स्त्रियों और युवतियों से ठसा ठस भर गया। हर कोई मिथुन की दुल्हन का मुंह देखना चाहता था। आखिर अंधेरा होने तक मुंह दिखाई का कार्यक्रम चला। स्त्रियों ने दुल्हन को मन चाहा नेक और उपहार दिया। ऐसी सुंदर दुल्हन को पाकर मिथुन भी निहाल हो गया। ऐसे सुख की तो उसने कल्पना ही नहीं की थी। उसे तो सपने में भी नहीं लगता था कि कभी उसका भी घर बस जाएगा। 2 दिन तक मिथुन काम पर नहीं गया, पर किसी ने उसे टोका भी नहीं। हाँ, 3रे दिन एकदम सुबह ही वह अपना पानी भरने के काम पर निकल गया। अब उसे किसी के घर रोटी खाने की जरूरत नहीं रह गई थी। उसकी दुल्हन उसके सामने बैठकर बड़े प्यार से गरम गरम खाना परोसती। मिथुन के दिन बड़े आराम से कट रहे थे। एक दिन उसे याद आया अपना वह चांदी का सिक्का, जिसे उसने खंडहर में छिपाकर रखा था। दुल्हन को नेग में मिले पैसे भी खत्म हो रहे थे। मिथुन ने सोचा, अगर मैं अपना चांदी का वह सिक्का ले जाऊं तो मेरी काफी दिन मजे में निकल सकते हैं। उससे मैं दुल्हन को नया जोड़ा कपड़ा भी खरीद कर दे सकता हूँ और कहीं घुमाने भी ले जा सकता हूँ। यही सोचकर मिथुन तेज कदमों से खंडहर की ओर चल दिया। चिलचिलाती धूप पड़ रही थी, सूरज सिर पर चमक रहा था, पर मित्तुन को गर्मी का एहसास नहीं था। वह तो मन ही मन खुश हो रहा था कि वह चांदी का रुपया उसे अच्छे वक्त याद आ गया। इसी खुशी ने उसके पैरों में गति और तेज कर दी। मित्तुन तेज कदमों से खंडर की ओर बढ़ा जा रहा था। वहां से कुछ दूरी पर ही राजा व्योमभूषण का महल था। उस समय राजा अपनी 12 दरी में खड़े कुछ सोच रहे थे। उसी समय उसे चिलचिलाती धूप में एक युवक तेजी से जाता दिखाई दिया। राजा को बड़ी उत्सुकता हुई कि यह कौन है और इसे ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया जो यह कड़ी धूप में भी इतनी तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। कुछ सोचकर राजा व्योमभूषण ने फौरन अपने दो सैनिकों को उस युवक को बुलाकर लाने का आदेश दिया। मित्तुन इतनी तेजी में था कि बड़ी मुश्किल से उन दोनों के साथ राजा व्योमभूषण के सामने आया। राजा ने मित्तुन से जानना चाहा कि इतनी कड़ी धूप में वह इस कदर तेजी से कहां जा रहा था। पहले तो मित्तुन ने यह सोचकर टालना चाहा कि भला वह खंडहर में जाकर 1 रुपए का सिक्का लाने की बात राजा को कैसे बताए, पर जब राजा ने बार बार जिज्ञासा प्रकट की तो उसे बताना पड़ा। राजा व्योमभूषण को बड़ी हैरानी हुई कि इस युवक के लिए वह चांदी का सिक्का इतना कीमती है कि उसके लिए इतनी सख्त धूप में भी तेजी से भागता चला जा रहा है। उन्होंने हंसकर कहा, सुनो मित्तुन, अगर तुम अपना चांदी का सिक्का लेने जाने का विचार छोड़ दो तो मैं बदले में तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दे सकता हूं। पर मित्तुन ने साफ इनकार कर दिया। वह चांदी का सिक्का तो उसके लिए किसी सपने जैसा था। उसकी जिंदगी भर की कुल जमा पूंजी वही थी, तो भला वह उसे कैसे छोड़ दे। आखिर राजा ने मित्तुन को और ज्यादा धन देने की बात कही। 10 के बाद बढ़कर रुपयों की संख्या 20, 50, 100, 1000 और 10,000 से बढ़ते बढ़ते आखिर पूरी 1,00,000 हो चुकी थी। राजा व्योमभूषण का कहना था कि अगर मित्तुन अपना चांदी का सिक्का लाने का विचार छोड़ दे तो वह उसे पूरे 1,00,000 रुपए देने को तैयार थे। दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे कि देखें अब मित्तुन का क्या जवाब है। पर मित्तुन का साफ साफ कहना था कि वह उस चांदी के सिक्के के बदले 1,00,000 रुपए लेने के लिए भी तैयार नहीं है। सुनकर दरबार में सभी भौचक्के रह गए। खुद राजा व्योमभूषण की अजीब हालत थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भला उस 1 रुपए के सिक्के में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जिसके कारण मित्तुन राजा से मिलने वाले पूरे 1,00,000 रुपए को भी ठुकरा रहा है। इतना ही नहीं, मित्तुन ने साफ साफ कह दिया कि उसके लिए अब और रुक पाना संभव नहीं है। वह बरसों पहले खंडहर में छिपाया गया अपना चांदी का रुपया लेने जा रहा था। राजा व्योमभूषण को यह बात अपनी हार जैसी लगी। आखिर कुछ सोचकर उन्होंने मित्तुन से कहा कि वे उसे आधा राज्य दे देंगे, पर शर्त है कि वह उस रुपए की बात भूल जाए। मित्तुन को लगा कि आधा राज्य मिलने का मतलब तो यह है कि वह आधा राजा बन जाएगा, फिर तो उसकी गरीबी और सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। यह सोचकर उल्टा वह दूसरों की मदद भी कर पाएगा जिससे किसी का कोई दुख या परेशानी ना हो। मित्तुन ने तुरंत हाँ कर दी। खुश होकर राजा ने मित्तुन से अगले ही दिन अपनी पत्नी को भी ले आने को और राजा रानी की तरह रहने का आदेश दिया। इसके लिए राजा ने मित्तुन को पर्याप्त धन भी दिया। अगले ही दिन मित्तुन पत्नी को लेकर महल में आ गया। उसकी पत्नी अवंती भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सुंदर तो वह थी ही, रानी जैसे कपड़े पहनकर तो और भी सुंदर लग रही थी। मित्तुन भी राजसी वस्त्र पहनकर एकदम राजकुमारों जैसा लग रहा था। राजा ने अपना दूसरा महल उन्हें रहने के लिए दे दिया। अगले दिन राजा का दरबार सजा था। मित्तुन के गांव के लोग भी यह अनोखा दृश्य देखने आए थे। वे उत्सुकता से उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे जब राजा भरी सभा में मित्तुन को आधा राज्य सौंपने की विधिवत घोषणा करने वाले थे। ठीक समय पर राज दरबार में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही राजा की आज्ञा पाकर महामंत्री ने राजा का संदेश सुनाया। आज से महाराज की आज्ञा से मित्तुन को आधा राज्य दिया जाता है। हाँ, यह मित्तुन की इच्छा पर निर्भर होगा कि वे कौन सा भाग लेना चाहेंगे, उत्तर का या दक्षिण का। मित्तुन स्वयं यहां आकर पूरी जनता के सामने घोषणा करें कि वे कौन सा भाग लेना चाहेंगे। उसी समय मित्तुन मंच पर गया और उसने घोषणा की, महाराज मैं उत्तर का भाग लेना चाहता हूं, क्योंकि उसी भाग में वह खंडहर है जिसमें मेरा चांदी का सिक्का रखा है। यह सुनते ही सबके चेहरे पर बड़ी बंकिम मुस्कान आ गई। राजा व्योमभूषण भी ठठा कर हंसे, बोले, मान गए भाई मिथुन, तुम जीते मैं हारा, तुमने आखिर तक अपनी जिद नहीं छोड़ी। सुनकर मिथुन भी मंद मंद मुस्कुराने लगा। और दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होती है हमारी आज की कहानी, जो कि एक जातक कथा थी जिसका टाइटल था मिथुन को मिला चांदी का सिक्का। आशा करती हूँ ये कहानी जितनी मुझे दिलचस्प लगी थी उतनी ही आप लोगों को भी लगी होगी। सुनते रहने के लिए कहानी पॉडकास्ट, आप सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ और फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि आपके ईमेल्स, कमेंट्स, रिव्यूज़, लाइक्स सब कुछ मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आप लिखते रहिए मुझे मेरे ईमेल एड्रेस write@prachigangwal.com पे, और सुनते रहिए पॉडकास्ट कहानी पर कहानियाँ। अलविदा लेना चाहती है अब आपकी होस्ट प्राची आपसे, अगली कहानी तक के लिए नमस्कार।